नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं हूं विनीता।
दोस्तों, इस बार हम आपके साथ अपने 16 से 31 अक्टूबर के अंक को लेकर चर्चा करेंगे। स्पीड और स्केल का पर्याय बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में लिए गए निर्णयों से हमारा देश बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र हो या फिर स्पीड स्केल की बात, बीते 10 वर्ष में विकास की गति और निर्णायक नेतृत्व का पर्याय बन चुका है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती 100 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की मंजूरी के साथ प्रगति का एक नया अध्याय लिख दिया है, जो विकसित भारत की ओर मार्ग प्रशस्त करने वाले 100 दिन बन गए हैं। इन 100 दिनों में किन किन क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों की पटकथा लिखी गई, यही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा है, जिस पर हम विस्तार से बात कर चुके हैं। अब चर्चा करते हैं पत्रिका में शामिल कुछ अन्य समाचारों की। मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्लॉग, समसामयिकी में स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल और गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को रखा गया है। व्यक्तित्व की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित दिगंबर हंसदा की जयंती पर नमन, फ्लैगशिप प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमरीका दौरा इस अंक में शामिल है। साथ ही ओडिशा में सुभद्रा योजना का शुभारंभ, पीएम विश्वकर्मा की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम, गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु को विकास की सौगात समेत इनसाइड में मन की बात, बैक कवर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर विशेष सामग्री, ये इस अंक की विशेषताएं हैं। लेकिन बीते 100-125 दिनों में भारत ने किस तरह विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में।
आज भारत हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में जिस तेजी से काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। भारत की स्पीड, भारत की स्केल अनप्रेसिडेंटेड है। अभी हमारी सरकार के थर्ड टर्म के करीब 125 डेज पूरे हुए हैं। मैं आपके साथ 125 डेज का अनुभव शेयर करूंगा। 125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। 125 डेज में हमने 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं, 8 नए एयरपोर्ट पे के काम शुभारंभ हुए हैं। इन्हीं 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, 125 डेज में हमने 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स को मंजूरी दी है।
विज्ञान की सार्थकता केवल आविष्कार और विकास में नहीं, बल्कि सबसे अंतिम व्यक्ति की आशा एवं आकांक्षाओं को पूरा करने में है। यही वजह है कि अनुसंधान में आत्मनिर्भरता देश का मंत्र बन चुका है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के साथ साथ मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC प्रणाली का भी उद्घाटन किया। स्वदेशी रूप से विकसित लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर से वैज्ञानिक अनुसंधान को सहज बनाने में मदद मिलेगी। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर पृथ्वी विज्ञान से लेकर ब्रह्मांड विज्ञान के अध्ययन तक में मदद करेगा, जबकि मौसम और जलवायु अनुसंधान में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC प्रणाली अर्का और अरुणिका से मदद भी मिलेगी। इस परियोजना पर 850 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। उन्नत प्रणालियां, मौसम और जलवायु, जैव सूचना विज्ञान और सामग्री विज्ञान सहित कई क्षेत्रों का समर्थन करने वाले अनुप्रयोगों से लैस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सुपर कंप्यूटर देश के युवा वैज्ञानिकों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस आयोजन की संपूर्ण जानकारी पत्रिका में शामिल है।
राष्ट्र सेवा जन सेवा में सब कुछ समर्पित पीएम मोदी का हर उपहार देश के नाम। श्रोताओं, गीता में कहा गया है, दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देशकाल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार की भावना के बगैर दिया जाता है, उसे सात्विक दान कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह अपने वेतन से बचाई गई पुरस्कारों में प्राप्त स्मृति चिन्हों की नीलामी से जुटाई गई राशि और खरीदी गई जमीन को दान कर देते हैं, वो भी इसी भाव को झलकाता है। इसी कड़ी में पीएम मोदी को मिले उपहार स्मृति चिन्हों की छठी ई नीलामी 17 सितंबर को शुरू की गई, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। जुटाई गई राशि नमामि गंगे परियोजना को समर्पित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक वेतन से जो पैसे बचाए उपहार और स्मृति चिन्हों की नीलामी से एकत्रित या पुरस्कार में मिली 100 करोड़ रूपये से अधिक की राशि लोक कल्याण के लिए वो दान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर नीलामी की घोषणा करने के साथ ही लिखा, हर वर्ष मैं सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान प्राप्त विभिन्न स्मृति चिन्हों की नीलामी करता हूं। नीलामी से मिलने वाली आय नमामि गंगे पहल को दी जाती है। जो स्मृति चिन्ह आपको रुचिकर लगें, उनके लिए बोली अवश्य लगाएं। सबसे अधिक 3 दर्जन से अधिक लोगों ने कांस्य की शानदार नक्काशीदार शंख के लिए बोली लगाई। ये कलाकृति पीएम मोदी को लक्षद्वीप के भूतपूर्व सैनिकों ने भेंट की थी। प्रधानमंत्री के उपहारों की नीलामी से जुड़ी सभी जानकारी पत्रिका में शामिल है।
भारत में मजबूत होते खेल इकोसिस्टम में खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पोडियम पर जगह बना रहे हैं। भारत सरकार की खेल नीति टॉप्स और खेलो इंडिया अभियान की उसी दूरदृष्टि का परिणाम है कि इस वर्ष पेरिस ओलंपिक्स पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। अब 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर अमृतकाल में शतरंज के स्वर्णिम काल का आगाज कर दिया है। ओलंपिक पैरालंपिक खिलाड़ियों के बाद अब शतरंज के बिसात पर करिश्मा दिखाकर लौटे खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर संवाद किया और फैसला लेने की क्षमता बढ़ाने में टिप्स दिए। भारत की महिला और पुरुष टीम ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में 44 अंक में से 42 अंक अर्जित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। शतरंज ओलंपियाड में 97 साल के इतिहास में भारत ने ऐसा पहली बार किया है। शतरंज ओलंपियाड खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद में कहा है कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने, उद्योग और GDP से नहीं बनता है। दुनिया के हर फील्ड में महारत होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तब कोई देश महान बनता है। संवाद के दौरान जहां पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से अनुभव पूछे, तैयारी में AI के इस्तेमाल पर सवाल पूछे, तो वहीं खिलाड़ियों ने भी उनसे कई सवाल किए। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान कराए गए खेल महाकुंभ के अनुभव बांटे। प्रधानमंत्री के खिलाड़ियों से बातचीत के प्रमुख अंश पत्रिका में शामिल है।
ग्लोबल संस्थाओं में सुधार से ही वैश्विक शांति और विकास संभव है। आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तनाव और संघर्ष के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को एक साथ मिलकर चलना होगा, जिससे पूरी मानव जाति का कल्याण होगा। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के साथ समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालना ही सबसे उपयुक्त है। इसमें भारत स्वतंत्र रूप से और क्वाड के साथ मिलकर अहम भूमिका निभा रहा है। अपनी अमरीका यात्रा के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि वैश्विक शांति और विकास के लिए जरूरी है कि ग्लोबल संस्थाओं में सुधार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बानी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा क्वाड में शामिल हुए। क्वाड के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी ने कहा कि वो इस सम्मेलन में मानव समुदाय के उस छठे हिस्से की ओर से बोल रहे हैं जो वैश्विक शांति, विकास और समृद्धि चाहता है, प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए। उन्होंने संतुलित नियमों का आह्वान किया और कहा कि भारत व्यापक लोक कल्याण के लिए अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, वहां रह रहे भारतीय मूल के लोग हों या जिसने भी भारतीय मूल के लोगों से भारत और पीएम मोदी के बारे में सुना हो, वो प्रधानमंत्री मोदी को देखना और सुनना चाहते हैं। यही वजह है कि जब भी पीएम इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं, वहां के लोगों में अपार जोश और उमंग होता है। जब भी अमेरिका गए, उन्हें देखने या मिलने की इच्छा रखने वालों का हर बार एक नया रिकॉर्ड बनता है और पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के सारे एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और यही तो नई दुनिया का एआई पावर है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन लम्हों का जिक्र करते हुए कहा कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए, तब उनकी आत्मीयता, गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और इस सम्मेलन में हुए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी पत्रिका में पढ़ी जा सकती है।
आदिवासी संस्कृति और भाषा का पर्यायवाची नाम है दिगंबर हंसदा। व्यक्तित्व की श्रेणी में इस बार इस अंक में इन्हें ही स्थान दिया गया है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो आदिवासी लोगों और उनकी भाषा के विकास, संथाल जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे। भारतीय संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद करने के साथ साथ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय काम किए। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजदोहा मिडिल स्कूल में हुई, जबकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा उन्होंने मानपुर उच्च विद्यालय से दी थी। बाद में उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बीए और एमए की पढ़ाई की। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2018 में पद्मश्री देने का निर्णय लिया। जब इस पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा हुई, तब उन्होंने कहा था कि यह सम्मान उन्हें वंचित समुदायों के लिए एक नए जोश के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि यह सम्मान झारखंड, ओडिशा और बंगाल के दूरदराज के इलाकों में वंचित समुदायों को गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक बुराइयों से उबारने के लिए उनके अथक सेवा को मान्यता प्रदान करता है। इस सम्मान के अलावा कई अनेक और भी सम्मान प्राप्त हुए। इनकी प्रेरणादायी जीवन यात्रा पत्रिका में पढ़ी जा सकती है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस को पत्रिका के बैक कवर पर स्थान दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कल्पना की जमीन पर उतारने के लिए कठोर परिश्रम और पुरुषार्थ करने वाले कर्मयोगी थे। उन्होंने हमेशा भारत की आजादी, अखंड भारत के निर्माण और नए भारत की नींव डालने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 3 लाख से ज्यादा गांव के करोड़ों किसानों ने अपनी खेती के औजार सौंप दिए, जिन्हें पिघलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और अगर चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हमें रहता है आपके सुझावों का इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा।
मैं विनीता ठाकुर।
दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।